नमस्कार भारत, रविवार 15 जनवरी, मैं हूं निखिल रंजन। पटना में यात्रियों से भरी नाव डूबी, कम से कम 20 लोगों की मौत, बढ़ सकती है मरने वालों की तादाद, लोगों में भारी गुस्सा।
मटर बुला करके आप इनवाइट किया था, इनवाइट किया था बिहार गवर्नमेंट ने पेपर में छाप के, इसलिए बच्चा लोग गया।
पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सुरजीत सिंह बरनाला का निधन। उत्तर प्रदेश में आज सादगी से मनेगा बीएसपी प्रमुख मायावती का जन्मदिन, पार्टी को उम्मीद उन्हीं की बनेगी सरकार।
पूरे उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं में अपने अपने ढंग से कार्यक्रम आयोजित करके बहन जी का जन्मदिन मनाएंगे और उन्हें शुभकामनाएं देंगे।
महात्मा गांधी को लेकर बीजेपी नेता घिरे नए विवाद में, न्यूज मेकर और उर्दू प्रेस की समीक्षा के साथ खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले प्रमुख विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार दिलनवाज पाशा से। बिहार की राजधानी पटना में शुक्रवार शाम गंगा नदी में नाव डूबने से कम 21 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक सबलपुर दियारा से पटना घाट की ओर लौट रही इस नाव पर क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे। माली के राष्ट्रपति ने गाम्बिया के राष्ट्रपति याहिया जमे से सत्ता छोड़ने का आग्रह किया है ताकि खून खराबा न हो। राष्ट्रपति इब्राहिम बुबाकर कीटा अफ्रीका फ्रांस सम्मेलन में बोल रहे थे, जहां गाम्बिया का राजनीतिक संकट हावी रहा। बीते महीने हुए चुनाव में जमेह को हराने वाले एडामा बैरो ने भी बुमाको में हुई इस बैठक में हिस्सा लिया, जहां उन्हें राष्ट्रपति कहकर संबोधित किया गया। माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बुबाकर कीटा ने कहा, हमने अपना किला छोड़ दिया है और आम समझौते से राष्ट्रपति बैरो का यहां स्वागत किया है, जिनकी वास्तविक मान्यता है, और मैं ऐसे उम्मीद करने का साहस कर रहा हूं कि 19 जनवरी को अफ्रीकी बुद्धिमत्ता हमारे भाई याहिया जमेह को प्रेरित करेगी। लीबिया के तट पर प्रवासियों से भरी एक नाव डूब जाने से कम 100 लोग लापता हो गए हैं। भूमध्य सागर में बचाव अभियान चला रही इतालवी कोस्ट गार्ड का कहना है कि अब तक 8 शव मिले हैं और 4 लोग जिंदा बचा लिए गए हैं। ये नौका लीबिया के तट से 50 किलोमीटर दूर डूबी है। अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप ने देश में चर्चित मानवाधिकार कार्यकर्ता और डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद जॉन लुइस की आलोचना की है। इसके बाद नेताओं और मनोरंजन जगत से जुड़े लोगों ने ट्रंप की कड़ी आलोचना की है। एक चर्चित कंजर्वेटिव टिप्पणीकार बिल क्रिस्टो ने कहा है कि ट्रंप जॉन लुइस से ज्यादा सम्मान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का करते हैं। जॉन लुइस 1963 में मार्टिन लूथर किंग के नेतृत्व में वाशिंगटन में निकाले गए ऐतिहासिक मार्च में भाषण देने वाले आखिरी जीवित व्यक्ति भी हैं। जॉन लुइस ने कहा था कि वो शुक्रवार को ट्रंप के शपथ समारोह में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि वो ट्रंप को अमेरिका का वैध राष्ट्रपति नहीं मानते हैं। इस पर टिप्पणी करते हुए ट्रंप ने ट्वीट किया था कि लुइस कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ बोलते ही रहते हैं। सर्बिया के प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर वुचिच ने राजधानी बेलग्रेड से उत्तरी कोसोवो को सर्बियाई क्षेत्र के लिए चलाई जा रही नई रेल सेवा को रोक दिया है। उन्होंने कोसोवो पर इस ट्रेन पर हमला करने की तैयारी करने के आरोप भी लगाए हैं। प्रधानमंत्री वुचिच ने कहा, मैंने इस वक्त ये फैसला किया है और मुझे इस फैसले पर गर्व है। मेरे सिवा इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है कि ट्रेन को रस्का में रोक दिया जाए, ताकि हमारे नागरिकों की जान और स्वतंत्रता की रक्षा हो सके और बड़े पैमाने के संकट को टाला जा सके और ये दर्शाया जा सके कि हम शांति के अलावा और कुछ नहीं चाहते हैं। रूस निर्मित इस ट्रेन पर 20 भाषाओं में लिखा है, कोसोवो सर्बिया का हिस्सा है। कोसोवो के राष्ट्रपति हाशिम थाशिन का कहना है कि सर्बिया का ये कदम उत्तेजक है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोसोवो ने 2008 में सर्बिया से अलग होकर खुद को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया था। इसे रूस समर्थित सर्बिया ने मान्यता नहीं दी थी। ब्राजील में कैदियों ने एक और जेल पर कब्जा कर लिया है। ब्राजील में इस साल यह तीसरा बड़ा जेल दंगा है। पुलिस का कहना है कि उत्तर पूर्वी शहर नटाल की अल्कास्विस जेल में हुए दंगे में 3 कैदियों के सर काट दिए गए, जबकि 2 विरोधी गैंगों की लड़ाई में कई अन्य कैदियों के मारे जाने की आशंका है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका के साथ चीन के रिश्तों में वन चाइना नीति वो आधार है जिस पर समझौता नहीं किया जाएगा। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत, रविवार की पहली सभा में आपका स्वागत है। आज आपके साथ मैं हूं निखिल रंजन। खबरों की शुरुआत बिहार से करते हैं, जहां पटना से सटे सबलपुर दियारा के पास गंगा नदी में नाव डूबने से कम 20 लोगों की मौत हो गई है। ये दुर्घटना तब हुई जब लोग मकर संक्रांति पर पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित पतंग उत्सव में शामिल होने के बाद वापस लौट रहे थे। इस घटना के बाद पीड़ित परिवारों में काफी गुस्सा था और उन्होंने सरकार को इसके लिए जिम्मेदार बताया है। पूरे ब्यौरे के साथ पटना से नीरज सहाय।
मकर संक्रांति के अवसर पर राजधानी पटना के निकट सबलपुर दियारा पर आयोजित पतंग उत्सव से लौटने के दौरान नाव डूब गई। इस घटना के बाद पीड़ित परिजनों में आक्रोश दिख रहा था और वे इसके लिए सरकार को जिम्मेवार बता रहे थे।
इनविटेशन मिला था, पतंग उड़ाइए घूमने गया था, बच्चा को लेकर आओ, क्या करने जाएगा। अच्छा। मेरा भाई था, मेरा उनकी वाइफ थी, उनका बच्चा था, एक दो साल का बच्चा था, ये चार क्या होगा,
क्या करें,
किसको दोष देंगे, बताइए। 3 घंटा बहुत बढ़िया है, बताइए। वो अगर आता रेस्क्यू तो बता नहीं, फोर्स देखिए 1000 फोर्स है, वहाँ पर एक फोर्स नहीं था।
फेलियर नहीं है, ये लापरवाही नहीं है, मर्डर है।
हमें खिलान में चाहिए मर्डर,
मर्डर बुला करके आप इनवाइट किया था, इनवाइट किया था बिहार गवर्नमेंट ने पेपर में छाप के, इसलिए बच्चा लोग गया था।
पटना के जिलाधिकारी संजय कुमार अग्रवाल कई पुरुष महिलाएं और बच्चों के जीवन की पतंग हमेशा के लिए कट जाने की पुष्टि करते हैं।
देखिए, अब तक 20 लोगों की डेथ कंफर्म हो चुकी है और उनकी डेड बॉडीज को भी रेस्क्यू ऑपरेशन में रिकवर कर लिया गया है। रात होने के बावजूद भी पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, मॉर्निंग में फिर से ये चलेगा, डूबी नाव को सुबह निकाला जाएगा। लगभग 40 लोग बताए जा रहे हैं, जिसमें 10 घायलों को पहले ही PMCH हॉस्पिटल भेज दिया गया है।
गंगा में डूबे लोगों के शव देर रात तक निकाले गए। सरकार की ओर से पीड़ित परिजनों के लिए मुआवजे की घोषणा और दुर्घटना के कारणों पर भी मंथन होती रही। दुर्घटना के बारे में आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत कहते हैं कि
इतनी संख्या में अगर भीड़ थी और भीड़ का एक अट्रैक्शन का कारण वह जो डिज्नीलैंड है वो भी था। कार्रवाई हो रही है और एक या दो दिन में सारे जितने भी इसके आयाम हैं उस पर हम लोग कंक्लूड करके तब अपना रिपोर्ट दें। पर्यटन विभाग के पदाधिकारियों से भी हम लोग की बातचीत नहीं हो पाई, क्योंकि अभी हम लोग की पहली प्राथमिकता थी रेस्क्यू ऑपरेशन और इसीलिए उतनी रात तक करके हम लोग इतने बॉडीज को रिकवर कर पाए।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार प्रशासन दियारा से लौटने के लिए नावों की व्यवस्था नहीं कर पाया, जिससे नावों के साथ साथ बिहार सरकार की साख भी डूब गई। नीरज सहाय, BBC पटना।
सुबह होने के साथ ही एक बार फिर राहत के जो काम हैं वो शुरू किए जाएंगे और इस दौरान हो सकता है कि और शवों को निकाला जाए, उसके बाद ही ये पूरी तरह से कहा जा सकेगा कि इस हादसे में कितने लोगों की मौत हुई है। इधर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सुरजीत सिंह बरनाला का निधन हो गया है। वो 91 साल के थे। बरनाला लंबे समय से बीमार थे। हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने चंडीगढ़ में वरिष्ठ पत्रकार विपिन पब्बी से बात की और सबसे पहले पूछा कि वो सुरजीत सिंह बरनाला को किस तरह याद करेंगे।
सुरजीत सिंह बरनाला का बहुत अहम रोल रहा है पंजाब में। वो बड़े क्रिटिकल टाइम पर चीफ मिनिस्टर रहे हैं पंजाब के, जो लास्ट ऑफ अकालीज एक तरह का इनको माना जा सकता है, जिसके अंदर इन्होंने बहुत अहम रोल अदा किया उस टाइम की पॉलिटिक्स पे।
उनकी जो प्रमुख उपलब्धियां हैं तो आप उन्हें किस तरह से आंकेंगे?
उस टाइम के जो भी अकाली लीडर थे उनमें से ये सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, समझदार और संयम रखने वाले लीडर। इमरजेंसी के टाइम पर ट्रक ड्राइवर के रूप में इन्होंने काफी जगह पर ट्रेवल किया और उसके बाद इन्होंने एक किताब भी लिखी जिसके अंदर इन्होंने अपने सारे संस्मरण उसके अंदर रखे।
उन्होंने कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं अदा की राजनीति में, कई अहम पदों पर वो रहे, वो मुख्यमंत्री रहे, राज्यपाल रहे। एक प्रशासक के तौर पर आप उन्हें किस तरह से देखते हैं?
बहुत ज्यादा लंबे दौर के लिए तो नहीं रहे चीफ मिनिस्टर, जितने सीमित टाइम के लिए थे उसमें उनका पूरा कंट्रोल था गवर्नमेंट के ऊपर। कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया जो बहुत ही हाईली कंट्रोवर्शियल हो। उनका हमेशा ये रहा है कि एक बैलेंस सा बनाकर रखना और सारे डिफरेंट जो इनके फैक्शंस हैं उनको अपने साथ उनको लगाकर रखना। और दूसरा जो आपने कहा कि वो वहां पर वो गवर्नर भी रहे तमिलनाडु, तो मेरे को यहां तो याद है कि वो गवर्नर काफी लंबे अरसे के लिए रहे थे, अपने टेन्योर से भी ज्यादा देर के लिए रहे थे।
उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी एक पहचान बनाई, उसकी वजह आप क्या देखते हैं? उनकी अपनी राजनीति को आप इसका कारण मानते हैं या उस समय पंजाब के जो हालात थे उसकी वजह से उनकी अहमियत राष्ट्रीय राजनीति में रही?
वैसे तो क्योंकि वो अकाली लीडर थे और टॉप लीडर थे यहाँ के, लेकिन मैंने जैसे कहा कि वो काफी सुलझे और पढ़े लिखे इंसान थे और इसलिए जो भी वो डिसीजन लेते थे बहुत एक्सट्रीम पर नहीं लेते थे। जिस पद पर भी रहे उन्होंने उस पद की गरिमा को बरकरार रखा।
उस दौर में पंजाब भी उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। पंजाब को सामान्य बनाने में, पंजाब को वापस पटरी पर लाने में एक नेता के तौर पर उनका कितना बड़ा योगदान था?
मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज्यादा उनका अहम रोल था इसके अंदर, क्योंकि जो सारी बातचीत हो रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट की पंजाब के अकाली लीडर्स के साथ, उसमें बरनाला जी जो थे वो एक तरह का जिसको कहते हैं कि सेंटर में थे, इन द सेंस कि वो एक बैलेंस रखना चाहते थे। जो दूसरे जो अकाली लीडर्स थे जिनको कई बार एक्सट्रीम कहा जाता था या रेडिकल कहा जाता था, लेकिन ये ऐसे थे जो हरेक को मिड डायरे में रखना चाहते थे। लोंगोवाल राजीव गांधी अकॉर्ड को इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पर उनका रोल वहां उस टाइम पर इम्पोर्टेंट था, क्योंकि उन्होंने ये कोशिश की कि कोई भी एक्सट्रीमिज्म की तरफ ना जाए।
वरिष्ठ पत्रकार विपिन पब्बी याद कर रहे थे सुरजीत सिंह बरनाला को। महात्मा गांधी को लेकर बीजेपी एक नए विवाद का सामना कर रही है। हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज के महात्मा गांधी पर दिए एक बयान को लेकर विवाद उठा है। कांग्रेस समेत दूसरे विरोधी दलों ने भारतीय जनता पार्टी की आलोचना की है। उधर भारतीय जनता पार्टी ने खुद को विज के बयान से अलग कर लिया है। क्या है पूरा मामला, सुनिए मानसी दास से।
केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी जब खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के कैलेंडर से महात्मा गांधी की तस्वीर हटाने के विवाद को ठंडा करने की कोशिश में जुटी थी, तभी हरियाणा सरकार के एक मंत्री के बयान ने इस मुद्दे को और गर्म कर दिया। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कल इस बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि खादी के लिए नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी से बड़े ब्रांड हैं।
जब से खादी के साथ गांधी का नाम जुड़ता रहा, खादी उठ ही नहीं सकी, खादी डूब गई। महात्मा गांधी का ऐसा नाम है नोट के ऊपर चिपक गया, जिस दिन से उस दिन से नोट की डिवैल्यूएशन हो गई। तो अच्छा किया है कि गांधी का हटा के मोदी का लगाया। मोदी ज्यादा बेटर ब्रांड नेम है और मोदी का लगने से 14% जो है सेल बढ़ी है खादी की।
विज का बयान सामने आते ही कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ऐसे ही बयान की अपेक्षा की जा सकती है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर लिखा गया कि हिटलर और मुसोलिनी भी बहुत शक्तिशाली ब्रांड थे। राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने भी अनिल विज के बयान की तीखी आलोचना की।
ये नलायक बेटा है भारत के, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपमानित लोग कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि बापू ने जो आजादी दिलाई और आज बोलने की उनको छूट है, मंत्री बने हैं, थोड़ा सा भी शर्म नहीं है ऐसे लोगों को।
विवाद गर्म होने लगा तो भारतीय जनता पार्टी ने खुद को अनिल विज के बयान से दूर कर लिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा,
हमारे मंत्री अनिल विज एक वरिष्ठ मंत्री हैं और बहुत ठीक से सोच समझ के ही सारी बात कहते हैं, लेकिन फिर भी कई बातें ऐसी होती हैं व्यक्तिगत तौर पर कोई क्या कहता है उसका कोई पार्टी से बहुत सीधा संबंध नहीं होता है। जहां तक खादी का विषय है, अब खादी के विषय में तो महात्मा गांधी को श्रेय जाता ही है कि महात्मा गांधी जी के कारण से खादी को जो बढ़ावा है वो मिला ही है।
बाद में अनिल विज ने भी अपना बयान वापस ले लिया, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या उनके बयान वापस लेने से इस मुद्दे पर शुरू हुआ विवाद भी ठंडा पड़ जाएगा।
रिपोर्ट सुना रही थी मानसी दास। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती का आज जन्मदिन है। उत्तर प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लागू होने की वजह से जन्मदिन सादगी से मनाया जाएगा, लेकिन बीएसपी इस बहाने प्रदेश की सभी विधानसभाओं में कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की तैयारी में है। बीएसपी का दावा है कि वो चुनाव के बाद पूर्ण बहुमत हासिल करेगी। दूसरे दल इस दावे पर सवाल उठा रहे हैं। एक रिपोर्ट के साथ वात्सल्य राय।
बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती के जन्मदिन के मौके पर पार्टी जमीनी स्तर पर शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मायावती अपनी पार्टी के उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी हैं। उम्मीदवारों और समर्थकों को जमीन पर सक्रिय दिखाने के लिए सभी विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम तय किया गया है। पार्टी के उत्तर प्रदेश में विधायक दल नेता गया चरण दिनकर कहते हैं,
पूरे उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं में अपने अपने ढंग से कार्यक्रम आयोजित करके बहन जी का जन्मदिन मनाएंगे और उन्हें शुभकामनाएं देंगे। बहुजन समाज पार्टी से कोसों दूर हैं सारी राजनीतिक पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या और तमाम राजनीतिक दल, सारे दलों के लोग मिल करके भी चुनाव लड़े, तब भी जनता उनके साथ नहीं है।
दिनकर का दावा है कि प्रदेश में ऐसा माहौल बना है कि बहुजन समाज पार्टी चुनाव के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस दावे पर सवालिया निशान लगा रही है। मायावती का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए ब्रजेश पाठक कहते हैं,
तथ्य ये है कि बहुजन समाज पार्टी के पास इस समय जनाधार लगभग समाप्त हो चुका है। शेड्यूल कास्ट में सिर्फ एक जाति उनके पास है जिसका लगभग 9% वोट है और उनके पास कुछ नहीं है। बैकवर्ड का कोई भी समाज उनके साथ खड़ा नहीं है और न ही फॉरवर्ड में कोई साथ उनके खड़ा है।
हालांकि बहुजन समाज पार्टी का दावा है कि उसका आधार मजबूत है। पार्टी ये दावा भी कर रही है कि उसे समाजवादी पार्टी की तकरार का लाभ भी मिलेगा। उधर समाजवादी पार्टी बीएसपी के इस आकलन को नकारात्मक राजनीति बता रही है। समाजवादी पार्टी की नेता जूही सिंह कहती हैं,
नकारात्मक राजनीति है। आज तक हमने उनको कोई घोषणा पत्र, कोई पॉलिसी जनता के लिए वो क्या करेंगे ये भी कहते हुए नहीं सुना है। ये जरूर कहते हुए सुना है कि आप अन्य पार्टियों को क्यों ना वोट दें।
राजनीतिक दलों के परस्पर विरोधी दावों के बीच मायावती की पार्टी हकीकत में कहां खड़ी है, इस सवाल पर वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान कहते हैं,
बीएसपी का इतिहास ये है कि जब जब वो पावर में रहती हैं, तब तब जो है बीएसपी का ग्राफ बढ़ता है और जब पावर से ज्यादा दिन बाहर हो गई तो ग्राफ बढ़ने का चांस नहीं है, गिरने का ज्यादा चांस। आज की डेट में जो ये बात कर रही है उसके पीछे है मुस्लिम वोट, जिसके लिए सब लोग बहुत डेस्परेट हैं। एक एडवांटेज है मायावती को कि उनके पास बेस वोट बहुत है, दलित वोट, उसमें से खिसकने के बाद भी 15-17% तो उनके पास है।
मायावती के जन्मदिन पर बहुजन समाज पार्टी शक्ति प्रदर्शन के जरिए यही साबित करने की तैयारी में है कि उसका आधार मजबूत है। लेकिन क्या पार्टी ये संदेश उस वोटर तक पहुंचा पाएगी जिसके आधार को साथ लाने पर उसकी नजर है?
रिपोर्ट सुना रहे थे वात्सल्य राय। और आज दिल्ली के अखबारों में क्या कुछ छपा है ये बताने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं दिलनवाज पाशा। जी दिलनवाज
जी, निखिल अखिलेश यादव को साइकिल चुनाव चिन्ह मिलेगा या नहीं ये तो चुनाव आयोग कल फैसला करेगा, लेकिन आज के अखबार बता रहे हैं कि उन्हें कांग्रेस के हाथ का साथ मिल सकता है। आज कई अखबारों में खबर है सूत्रों के हवाले से कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो अखिलेश गुट है उसमें गठबंधन के लिए लगभग सहमति बन चुकी है। वहीं इसी खबर पर अमर उजाला लिखता है, गठबंधन की खिचड़ी तो पक चुकी लेकिन कांग्रेसियों को हवा तक नहीं। अखबार ने प्रदेश के सक्रिय कांग्रेसी नेताओं से बात की है और उन्होंने कहा है कि उन्हें जानकारी नहीं है। लेकिन अखबार ये भी लिखता है कि राहुल प्रियंका अखिलेश में गठबंधन को लेकर सहमति बन चुकी है। कल ही बीबीसी हिंदी ने भी अपनी खबर में ये संकेत दिया था कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन लगभग तय है उत्तर प्रदेश में। एक खबर आज के अखबार में द संडे टाइम्स की ये खबर है जो ध्यान खींच रही है, देश में 400 से ज़्यादा पुलिस थाने ऐसे हैं जहां टेलीफोन तक नहीं है। और बात पुलिस की हो रही है तो जिक्र मध्य प्रदेश के कटनी का, जहां एसपी गौरव तिवारी के तबादले के बाद शहर भर में प्रदर्शन हो रहे हैं और अखबार ने वजह बताई है कि सिर्फ 6 महीने 4 दिन में ही एक एसपी इतना लोकप्रिय कैसे हो गया। अखबार लिखता है, स्मैक शराब माफिया की कमर तोड़ी तो बनी जनता के दिल में जगह। और लखनऊ एयरपोर्ट से जुड़ी एक खबर है, अमौसी एयरपोर्ट पर रडार में खराबी आई है, हवा में मंडराते रहे कई विमान, सैकड़ों यात्री फंसे और 2 दिन तक इस एयरपोर्ट के जो ऑपरेशंस हैं वो प्रभावित रह सकते हैं। ये खबर भी आज के कई अखबारों के पहले पन्ने पर है। इसके अलावा एक और खबर जो ध्यान खींच रही है, हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार को सलाहकारों ने जंक फूड यानी जो बाहर स्टॉल्स पे फूड मिलता है उस पर टैक्स लगाने की सलाह दी है, ऐसा हो सकता है।
बहुत शुक्रिया दिलनवाज पाशा अखबारों की समीक्षा के लिए। और उर्दू अखबारों में क्या कुछ छपा है ये जान लेते हैं इस पूरे हफ्ते, जिसे तैयार किया है इकबाल अहमद ने और आपको सुना रहे हैं प्रभात पांडे।
इस हफ्ते पाकिस्तान से छपने वाले उर्दू अखबारों ने जिन खबरों को सुर्खियां बनाया उनमें 5 नागरिकों का लापता हो जाना, पनामा लीक्स, प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का कटास राज मंदिर दौरा, भारत और अफगानिस्तान के बीच बढ़ती निकटता जैसी खबरें शामिल हैं। पिछले सप्ताह राजधानी इस्लामाबाद से 5 नागरिक लापता हो गए, पूरे हफ्ते ये खबर सारे अखबारों के पहले पन्ने पर रही। रोजनामा दुनिया ने पाकिस्तानी संसद के ऊपरी सदन सीनेट के चेयरमैन रजा रब्बानी के एक बयान को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, लोगों को गायब करके क्या पैगाम दिया जा रहा है, संसद डरने वाली नहीं है। इस मौके पर एक और सांसद फरहतुल्लाह बाबर ने कहा कि पहले लोग फाटा और बलूचिस्तान से गायब होते थे, अब तो इस्लामाबाद से भी लोग गायब हो रहे हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पंजाब प्रांत के ऐतिहासिक कटास राज मंदिर परिसर का दौरा किया और वहां वाटर फिल्टरेशन प्लांट का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने वहां लोगों को संबोधित भी किया। अखबार जंग ने इस खबर पर नवाज शरीफ के एक बयान को सुर्खी लगाई है, सिर्फ मुसलमानों का प्रधानमंत्री नहीं सबकी खुशियों में शरीक होता हूं। अखबार के मुताबिक नवाज शरीफ ने कहा कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान को अल्पसंख्यकों के दोस्त के तौर पर पहचाना जाएगा। भारत और अफगानिस्तान की बढ़ती दोस्ती ने भी पाकिस्तानी अखबारों में सुर्खियां बटोरी। नवा-ए-वक्त ने पहले पन्ने पर लिखा है, भारतीय और अफगान खुफिया एजेंसियों के गठजोड़ पर चिंता, पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रही हैं। अखबार के मुताबिक पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नफीस जकरिया ने कहा कि विदेशी ताकतें हालात को बिगाड़ रही हैं और पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल कर रही हैं। भ्रष्टाचार के मामले से जुड़े पनामा लीक्स की खबरें भी पूरे हफ्ते छाई रहीं। रोजनामा दुनिया ने बीबीसी के हवाले से लिखा है कि लंदन में नवाज शरीफ का परिवार जिन घरों का इस्तेमाल करता है उन्हें 90 के दशक में खरीदा गया था। भारत से छपने वाले उर्दू अखबारों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के बीच तकरार, खादी ग्रामोद्योग के कैलेंडर और डायरी पर महात्मा गांधी की जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर और हज सब्सिडी से जुड़ी खबरें प्रमुखता से छपी। जदीद खबर ने हज सब्सिडी को खत्म किए जाने के लिए अल्पसंख्यक मंत्रालय के जरिए एक कमेटी के गठन किए जाने के फैसले पर संपादकीय लिखा है।
ये थी उर्दू अखबारों की समीक्षा और अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर। आज से फ्रांस में इसराइल फिलिस्तीन के मुद्दे पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है। जानकारों के मुताबिक पश्चिमी देश महसूस कर रहे हैं कि बीते कुछ महीनों में यूरोप में हुए चरमपंथी हमलों के पीछे एक वजह यह भी है कि फिलिस्तीन का मामला अभी तक हल नहीं हो पाया है। पश्चिमी देश चाहते हैं कि इसराइल और फिलिस्तीन का कोई सम्मानजनक हल निकले। फ्रांस ने इसके लिए सम्मेलन बुलाया है। सुरक्षा परिषद में इसराइल के खिलाफ प्रस्ताव पास होने के कारण इसराइल ने इस सम्मेलन का विरोध किया है। सम्मेलन में भारत भी काफ़ी सक्रिय है। हमारे सहयोगी इकबाल अहमद ने जेएनयू विश्वविद्यालय में मध्य पूर्व विभाग के प्रोफेसर कमाल पासा से पूछा कि भारत की इसमें क्या दिलचस्पी है।
जब से मद्रिद पीस कॉन्फ्रेंस हुई स्पेन में, तभी से भारत प्रयास करता आ रहा है और डिप्लोमेटिक रिलेशंस इसराइल के साथ स्थापित किए थे। अपने लिहाज से भारत इसराइल को बार बार ये चेतावनी भी दे रहा है कि ये मसला किसी न किसी तरह से हल होना चाहिए और पेशकदमी होनी चाहिए। लेकिन अब भारत सरकार को भी ये मानना पड़ रहा है कि जो अस्थिरता क्षेत्र में है और जो खाड़ी के देशों से जो मिल जा रहा है, अब बहरैन और ईरान और इराक और तेल और अन्य मामलों से, भारत की आर्थिक मामलों में वहाँ जो भी अस्थिरता होती है डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, तो भारत इस प्रयास में पेश कदम है। इसलिए कि वहाँ इंस्टेबिलिटी और वायलेंस मिलके साउथ एशिया पे भी इम्पैक्ट कर रहे हैं। भारत भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर बनने की उम्मीद और कैंपेन जोर और शोर से कर रहा है, तो इसमें पेश कदमी से उसको भी काफी प्रयास होगा। हालांकि इसराइल अपोज करता रहा इस कॉन्फ्रेंस को, लेकिन भारत कोई ऐसी पेशकदमी नहीं करेगा जिससे इसराइल नाराज।
क्या जो मौजूदा नरेंद्र मोदी की सरकार है उसके आने के बाद मिडिल ईस्ट में क्या कोई खास तरह का विदेश नीति में भारत के बदलाव आया है और इस कॉन्फ्रेंस के जरिए कुछ दूसरे संदेश देने की कोशिश हो रही है?
देखिए, ऊपरी तौर पे तो कुछ खास परिवर्तन नहीं हुआ है, क्योंकि भारत के प्रेसिडेंट इसराइल गए थे, होम मिनिस्टर, गृह मंत्री भी वहाँ गए थे, विदेश मंत्री भी जा चुके हैं और वहाँ के सदर प्रेसिडेंट भी यहाँ आए हैं। हमारे प्रधानमंत्री की भी विजिट की बात हो रही है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री पहले ईरान और इमारात और सऊदी अरेबिया जाके उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि खाड़ी में हमारे हित बहुत महत्वपूर्ण है। तो हाँ, कुछ हद तक फलस्तीन के मामले में थोड़ी ढील हुई है, लेकिन भारत का प्रयास ये है कि बैलेंस पॉलिसी करना चाहिए और हम फलस्तीन के एक इंडिपेंडेंट देश को सपोर्ट करते आ रहे हैं यूनाइटेड नेशंस में, नैम कॉन्फ्रेंसेस में और अन्य इंटरनेशनल फोरम्स में, तो वही रवैया होगा पेरिस में भी।
जेएनयू के प्रोफेसर कमाल पाशा से बात कर रहे थे हमारे सहयोगी इकबाल अहमद। साल 2017 की पहली फिल्म ओके जानू पर सेंसर की कैंची चली, लेकिन ये किसी किसिंग सीन या किसी ग्लैमर सीन के लिए नहीं बल्कि महात्मा गांधी से जुड़ी बातों को लेकर है। फिल्मों में कैंची किन कारणों से चलती है बता रहे हैं सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष पहलाज नेहलानी, जो इस हफ्ते के बीबीसी न्यूज़ मेकर हैं। उनसे बात की है इंदु पांडे ने।
पहला स्नेहला ने कहा, आप सबको नमस्कार।
नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बीबीसी न्यूज मेकर्स में। थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। फिल्म वालों के लिए तो हर फ्राइडे ऐसा ही लगता होगा क्योंकि बॉक्स ऑफिस पे उनकी फिल्में जो रिलीज होती हैं, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो रिलीज से पहले ही न्यूज में आ जाती हैं, कई बार सेंसर बोर्ड की कैंची की वजह से। हालांकि पहलाज नेहलानी साहब ने कई बार लाइट कैमरा एक्शन भी कहा है, लेकिन यहाँ पे जो कट होता है उसका मतलब कुछ और ही हो जाता है।
डेफिनेटली लोगों का माइंड बदल चुका है, जो देखने वाले जो जूरी है उनका माइंड बदल चुका है, तो दे आर लिबरल। अगर मेकर इतना लिबरल हुआ है, उसको जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म में आ रहा है वही चीजें जो है अपना दिखानी है पिक्चर में, तो डेफिनेटली उनके साथ साथ थोड़ा बहुत जो है हमारे जूरी भी जो है वो भी लिबरल हुई है, लेकिन इतनी लिबरल नहीं हुई है कि वो सोसाइटी को खराब करे।
हिंदी फिल्में जो कि रोमांस से भरी होती हैं, अब जब रोमांस होगा तो जाहिर सी बात है उसमें किस तो होगा ही। अब ये किस कितनी लंबी खिंच जाती है इसका पता कैसे चलेगा?
लव मेकिंग भी करते हो वो भी अलाउड है, लेकिन उसकी जो है सीमा होती है ना, आप कौन से सर्टिफिकेट में आप दोगे? हम मतलब ऐसे नहीं है कि कैंची लेके बैठे हुए, हमें जो रेटिंग सिस्टम होती है हमारे पास तीन ही रेटिंग है, UAN-18 गाइडलाइन में जो है जितना दिखा सकते हो उतना ही दिखाओगे, कि माँ बाप के साथ बच्चे देखे तो कितना देख सकते हैं, तो आपकी लिमिटेशन होती है।
जब किसी भी फिल्म के किसी भी सीन पर कैंची चलाई जाती है तो क्या ध्यान रखते हैं उसके ऊपर?
देश है पहले, देश से ऊपर जो है पब्लिक है, उनके कल्चर है, उनकी जो है संस्कृति है, हेरिटेज कल्चर है, उसको डैमेज ना हो।
तो जब आपकी फिल्में आएंगी तो आप उस फिल्मों को बनाते वक्त पूरा ख्याल रखेंगे?
देखिए मैं फिल्म खुद बनाता हूँ, किसका दखल नहीं मैं चाहता, और मैं फिल्म इंडस्ट्री वालों के बीच में उनके क्रिएटिविटी में कोई ऐसी दखल नहीं देना चाहता हूँ जिसमें दंगल हो जाए।
तो पहला नेहलानी कह रहे थे कि वो अनावश्यक दखल नहीं देते हैं, उनसे बात कर रही थी इंदु पांडे। और अब खेल की खबरें सुन लेते हैं आदेश कुमार गुप्त से।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त।
बस एक ही चीज है कि मैं आई एम फीलिंग एक्साइटेड कि जब टॉस के लिए जाऊंगा तो आई विल बी फुल टाइम कैप्टन ऑफ इंडिया, तो दैट इज अ प्राउड मोमेंट फॉर मी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक कि मेरे को कुछ भी मेंटली या एनवायरनमेंट में कुछ चेंज लग रहा है, सब कुछ बिल्कुल सेम है जैसे पहले था।
ये शब्द है भारत के कप्तान विराट कोहली के, जो अब टेस्ट एक दिवसीय और 2020 यानी तीनों क्रिकेट प्रारूप में भारत के कप्तान हैं, और पूर्ण रूप से कप्तान बनने के बाद उनकी पहली परीक्षा आज से इंग्लैंड के साथ शुरू होने जा रही एक दिवसीय सीरीज से होगी। तीन मैचों की सीरीज का पहला मैच आज पुणे में खेला जाएगा। इंग्लैंड की टीम भारत से टेस्ट सीरीज भले ही 4-0 से हार गई, लेकिन एक दिवसीय क्रिकेट में इन दिनों उनका रिकॉर्ड बेहतर है। इंग्लैंड ने अभ्यास मैचों में भी अपना दमखम दिखाया और आयन मॉर्गन की कप्तानी में वो भारत को टक्कर देने में सक्षम है। भारत का दारोमदार विराट कोहली के अलावा महेंद्र सिंह धोनी, शिखर धवन और अश्विन और रविंद्र जडेजा पर रहेगा। वैसे विराट कोहली किसी भी दबाव से इनकार करते हैं।
जिस तरीके की हम क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, जैसे हमने परफॉर्म किया पिछले कुछ समय में टेस्ट फॉर्मेट में, आई थिंक वो चीजें हम वन डे फॉर्मेट में भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं और उसको हम यहाँ पे भी रेप्लिकेट कर सकते हैं। जैसे एमएस ने खुद बोला कि टेस्ट मैचेस में कैप्टनसी करना ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि आपको हर समय अवेयर रहना है कि कौन सा सेशन आपसे दूर जा सकता है, वो टेस्ट मैच डिफाइन कर सकता है। वनडे क्रिकेट में स्टिल ऑपोजिशन के पास गलती करने का ज़्यादा स्कोप रहता है, तो उससे भी आप गेम में आ सकते हैं।
ये सीरीज केवल तीन मैचों की है, इसलिए दोनों टीमों के लिए आज का मैच बेहद महत्वपूर्ण है। इधर घरेलू स्तर पर गुजरात ने पहली बार रणजी ट्रॉफी को अपने नाम किया। इंदौर में खेले गए फाइनल में कल गुजरात ने मुंबई को 5 विकेट से मात दी। गुजरात के सामने जीत के लिए 312 रनों का लक्ष्य था, जो उसने कप्तान पार्थिव पटेल के शानदार 143 और मनप्रीत जुनेजा के 54 रनों की मदद से 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया।
और खेल समाचारों के बाद अब आइए कार्यक्रम में सुन लेते हैं प्रमुख समाचार एक बार फिर।
बिहार की राजधानी पटना में शुक्रवार शाम गंगा नदी में नाव डूबने से कम 21 लोगों की मौत हो गई है। माली के राष्ट्रपति ने गाम्बिया के राष्ट्रपति याहिया जमे से सत्ता छोड़ने का आग्रह किया है ताकि खून खराब न हो। लीबिया के तट पर प्रवासियों से भरी एक नाव डूब जाने से कम 100 लोग लापता हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप ने देश में चर्चित मानवाधिकार कार्यकर्ता और डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद जॉन लुइस की आलोचना की है। सर्बिया के प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर वुचिच ने राजधानी बेलग्रेड से उत्तरी कोसोवो के सर्बियाई क्षेत्र के लिए चलाई जा रही नई रेल सेवा को रास्ते में ही रोक दिया है। ब्राजील में कैदियों ने एक और जेल पर कब्जा कर लिया है। ब्राजील में इस साल ये तीसरा बड़ा जेल दंगा है। बीबीसी समाचार।
प्रमुख समाचार सुनाया दिलनवाज पाशा ने और आज स्टूडियो संभाला है देवाशीष कुमार ने। आपसे शाम 7:30 बजे फिर मुलाकात होगी। दिन भर में निखिल रंजन को दीजिए अनुमति। नमस्कार।